रिलैक्सेशन टेक्निक्स को समझना इट्स इंडीड अ कॉल ऑफ द आवर, यह समय की पुकार है कि हर व्यक्ति को, वह चाहे छोटा है या बड़ा है, गरीब है अमीर है, उसे रिलैक्सेशन टेक्निक समझनी और सीखनी चाहिए। 17वीं सदी को विश्वास की सदी माना गया है कि जब हर व्यक्ति को कोई न कोई रूप से आध्यात्मिक बातों में विश्वास होता था। 18वीं सदी को एज ऑफ रीजनिंग भी कहा गया है, तर्क की सदी, कि तब साइंटिस्ट भी तर्क करने लगे कि क्या सच है क्या झूठ है, और धीरे धीरे साइंटिफिक डेवलपमेंट्स भी होने लगे। बहुत सारी गलत मान्यताएं थी कि उस पर से भी पर्दा उठ गया। और 19वीं सदी को एज ऑफ प्रोग्रेस कहते हैं कि जिसमें काफी प्रगति हुई, प्रोग्रेस हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और अब तो यहां आ गया है 20th सेंचुरी, परंतु न आए तो अच्छा है, 19 तक ही रहो और फिर उनको पूछो कि 20वीं सदी कौन सी सदी थी, तो लोग कहेंगे कोई अलग अलग बात की, कंपटीशन की सदी थी, नर्वसनेस की थी, डिप्रेशन की, कोई ना कोई बात, और फिर अल्टीमेटली सही उत्तर मिले तो बता दो कि हाँ 20वीं सदी वह इट वॉज एज ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। नाउ व्हाट विल बी द 21st सेंचुरी लाइक? हाँ, अच्छा आपको पता है इसलिए, उनको नहीं मालूम होगा तो शायद नहीं बताएंगे। और कोई ये भी कहता है कि 21st सेंचुरी माइट बिकम एज ऑफ पीस। इसका पूरा आधार हमारे पर है कि 21वीं सदी वह डिप्रेशन या पैनिक की एज होगी या पीस की होगी। अगर हम रिलैक्सेशन प्रैक्टिस को प्रॉपरली समझ करके उसे पॉपुलराइज करेंगे, सभी इसे प्रैक्टिस करने लगेंगे, जीवन में स्ट्रेस मैनेजमेंट और राइट थिंकिंग कोर्स में जो बातें बताई वो अपनाएंगे, तो इट कैन ऑल्सो बिकम एज ऑफ पीस। और हम सभी को चाहिए कि हर व्यक्ति, बल कितना ना क्रिमिनल हो, तो वो क्रिमिनल भी क्या चाहता है? पीस चाहता है। कितना ना बड़ा क्रिमिनल हो, वो भी प्यार चाहता है, वो नफरत नहीं चाहता है। तो इसलिए हम सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी चॉइस क्या है, वी हैव टू डिसाइड। और ये सारा हमारे पर निर्भर है कि 21st सेंचुरी कैसी बनेगी। और अगर आप इस बात को डिजायर करते हैं 21st सेंचुरी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी शुड बी स्ट्रेस मैनेजमेंट। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो चीज आवश्यक है वह है रिलैक्सेशन टेक्निक। ये बात ये हमने आगे भी ली थी, वो फिर से हम रिपीट कर सकते हैं या तो आगे हम न ले, कि जिस प्रकार से एनाल्जेसिक है वो सरदर्द को मिटाता है, ऐसे ही एंटासिड्स है वह एसिडिटी को रिलीव करते हैं, जो एंटीपायरेटिक मेडिसिन होती है कि जो फीवर को कम करती है, तो ये सभी उसके एंटीडोट्स है। तो इसी प्रकार से रिलैक्सेशन जो है वह भी स्ट्रेस का एंटीडोट है। परंतु बहुत बड़ा प्रश्न है वह यह है कि हम रिलैक्स कैसे करें, उसकी विधि क्या अपनाएं। एक कार्डियोलॉजिस्ट ने अपना ही अनुभव सुनाया था कि उनके पास एक पेशेंट आया कि जिसे चेस्ट पेन था, और अच्छी तरह से जब उसकी चेकिंग की तो पता चला कि इसका हार्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है, ये बहुत चिंता करता है, नर्वस होता है, डरता है, इसके कारण इसको यह हार्ट पेन हो रहा है। तो डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन भी दी, परंतु साथ साथ ये एडवाइस दी कि भाई ये मेडिसिन इतना काम नहीं करेगी, तू चिंता करना छोड़ दे, तू रिलैक्सेशन कर, तो तेरा ये जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। तो पेशेंट चला गया और एक आध मास के बाद वापस आया, तो वापस उसकी अच्छी तरह से चेकिंग की, उसका कार्डियोग्राम भी लिया गया, परंतु कोई भी तकलीफ दिखाई नहीं दी। तो दोबारा उन्होंने थोड़े फोर्स से उसको कहा कि मैंने अगली बार भी तुझे एडवाइस दी थी, वही करना आवश्यक है कि तू चिंता करना छोड़ दे, जस्ट रिलैक्स, और यह बोल के उसे वापस भेज दिया। और करीब 1.5 मास के बाद फिर से पेशेंट आ गया सेम प्रॉब्लम लेकर के, तभी फिर से चेकिंग की और यही आउटकम आया, तो डॉक्टर थोड़े गुस्से में आ गए। उसको कहा मैंने तुझे बार बार बोलता हूं कि यू शुड रिलैक्स, यू आर नॉट रिलैक्सिंग एंड कमिंग टू मी अगेन एंड अगेन, व्हाट आई कैन डू फॉर यू। तो पेशेंट बेचारा सुनता रहा और सुन करके उसने धीरे से कहा कि डॉक्टर साहब मैं भी समझता हूं आप मुझे बार बार ये एडवाइस दे रहे हैं कि मुझे रिलैक्स करना चाहिए, परंतु डॉक्टर आपने कभी यह नहीं बताया कि मैं रिलैक्स कैसे करूं। तो डॉक्टर ने कहा कि इट वॉज एन आई ओपनर फॉर मी ऑल्सो, मुझे भी लगा कि भी सचमुच मैंने इसको यह तो नहीं बताया कि वो कैसे रिलैक्स करे। तो इसलिए जो रिलैक्सेशन की टेक्निक्स है वो बहुत जरूरी है, सिर्फ कहने से हम रिलैक्स नहीं हो सकते। और ये मैकेनिज्म क्या है, जब हम रिलैक्स होते हैं तब क्या होता है, और इसकी जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है कि जब हम रिलैक्स होते हैं तो सबसे पहले तो हमारे शरीर के सभी अंगों में, सभी मसल्स में, सभी कोशिकाओं में एक बहुत सूक्ष्म मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी है, वह पास होती रहती है। और जब भी हम टेंशन में आते हैं तो तब यह इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस दे इंक्रीजेस, परंतु जब हम रिलैक्स होते हैं तो यह माइक्रो इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस है वह कम होते हैं। दूसरी बात कि मस्तिष्क का जो बीच का हिस्सा है जिसको हाइपोथैलेमस और थैलेमस कहते हैं, तो यह जो बीच का हिस्सा है वह बाहर, एक तो मस्तिष्क का बीच का रिश्ता और उसके ऊपर एक बाहर का हिस्सा है, यह जो बाहर का हिस्सा है वह बार बार बीच के हिस्से को डोमिनेट करता रहता है, कोई ना कोई बात बताता रहता है, उसे डिस्टर्बेंस करता है। तो जब हम रिलैक्स होते हैं, जितना डीपली रिलैक्स होंगे तो ये जो डोमिनेंस है बाहर के हिस्से का, वह डोमिनेंस खत्म हो जाता है और उसके कारण हमें मदद मिलती है, उसके कारण भी पीस का अनुभव होता है, डिटैचमेंट का अनुभव होता है। और जब हम रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो पेन भी खत्म हो जाता है। लंदन में भी जब इससे भी बड़ी सभा में सिर्फ 5-7 मिनट के लिए रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस कराई गई थी, और वह सभी नए लोग थे, वह मेडिटेशन की प्रैक्टिस नहीं करते थे, फिर भी जब रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस के बाद उनको पूछा कि आपको कैसा लगा, तो एक भाई जो फ्रंट में ही बैठे थे उन्होंने बहुत ही आश्चर्यजनक अनुभव सुनाया। उसने कहा कि 10 साल से मुझे पैरों में दर्द है और कितनी भी दवा से मेरा वह दर्द कभी भी खत्म नहीं हुआ है, परंतु आज बस 7-8 मिनट की प्रैक्टिस में मेरा दर्द गायब हो गया, जैसे मैं 10 साल पहले जो स्थिति थी मेरी उसी स्थिति का अनुभव कर रहा हूं कि वह दर्द है ही नहीं। ऐसे ही आप में से भी कुछ लोग जानते हैं कि भले टेक्निक्स बहुत सिंपल है, कई लोग जब इसको सुनते हैं तो भी समझते हैं कि क्या ये तो भी ऑर्डिनरी बात है, इसमें कोई खास बात नहीं है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन ये सिंपल टेक्निक भी जो लोग प्रॉपरली करते हैं तो उसे इतना फायदा होता है कि पिछली बार जब स्मार्ट की ट्रेनिंग हुई, भल हमने ऐसा कोई लक्ष्य नहीं रखा था, सिर्फ एक नेचुरल वे में जैसे रिलैक्सेशन कराते हैं वैसे करवाया, तो सुषमा बहन को फ्रोजन शोल्डर था कि उनके हाथ है वो उठते नहीं थे, तो बस वो थोड़ी देर का जो रिलैक्सेशन किया और जब हमने पूछा कि कैसा लगा तो सुषमा बहन ने हाथ ऊपर कर दिया और उसने कहा, सुनाया भी कि मुझे फ्रोजन शोल्डर है, मेरा हाथ कभी भी ऊपर नहीं होता, देखो अभी ऊपर हो रहा है इजीली, उन्होंने कईयों को कहा। उसके कारण यह स्मार्ट की ट्रेनिंग भी थोड़ी पॉपुलर बनी, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की, दादी ने भी उनको पूछा कि क्या कराते, कैसे तुम्हारी ये तकलीफ ठीक हो गई, भल एक नेचुरल हुआ। हम कहेंगे कि भाई जिस को भी फ्रोजन शोल्डर है सबको कराने लगो तो परसेंटेज में डिफरेंस जरूर आएगा, परंतु जो कहने का भाव है कि प्रॉपरली रिलैक्सेशन करने से इवन सिंपली भी करो तो उसके कहीं जो पेन है वह डिसअपीयर हो जाता है। जो लोग स्ट्रेस में होते हैं वह तुरंत ही तनाव से मुक्त भी हो जाते हैं। डॉक्टर जयसवाल भी अभी बता रहे थे कि उन्होंने वहां पर करवाया, तो उनको रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप बताओ 1 मिनट में अनुभव अपना क्या हुआ।
फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन जैसे डॉक्टर गिरीश पटेल ने कहा था कि थोड़े से लोगों में करना, तो पहले तो हमने थोड़े से लोगों में किया, तो रिलैक्सेशन टेक्निक वॉज वेरी सक्सेसफुल. फिर 400 के करीब लोगों में किया, तो उनमें से कुछ लोगों को लेग पेन्स थी, तो पीछे से हमने ये कमेंट्री चालू कर दी थी सॉफ्ट म्यूजिक, और धीरे धीरे जैसे हम करवाते हैं फ्रॉम फुट टू.
तो मैं कराऊंगा आप भले उसका रिजल्ट.
तो इसमें ये है, वो बहुत से लोगों को जो लेग पेन्स थी वो इतना उनको अच्छा लगा, ठीक हो गई, और वो पेशेंट अभी एक तो यहाँ ही है, मतलब इधर हमारे साथ आई है.
अच्छा.
एक और थी, वो कई दिन मेरे घर में चक्कर लगाती थी कि मुझे वो कैसेट दे दो जिसमें रिलैक्सेशन के बारे में डिटेल में है. तो बहुत अच्छे, मतलब लोगों को ये इतना अच्छा लगा कि जब हम आते हैं ना ब्रेन में, बोलते हैं कि अब आप स्टार पे आ जाओ, तो वो कहते हैं जिनको हमें आत्मिक स्थिति कभी महसूस नहीं हुई उनको आत्मिक स्थिति उस दिन महसूस हुई.
तो इस प्रकार कई फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स भी है रिलैक्सेशन के, और साथ साथ प्रैक्टिकल भी हम देखते हैं कि इसके कहीं एडवांटेजेस है. ऐसे ही रिलैक्सेशन से साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी होते हैं. सचिन भाई ने भी आपको बताया होगा कि मेडिटेशन से कैसे वो ब्लॉक्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं. ये सही है कि रिलैक्सेशन से शायद 100% खत्म नहीं होते, परंतु वो काफी डाइल्यूट हो जाते हैं, और वो डाइल्यूट होना वो भी आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. साथ साथ जब हम बहुत डीप रिलैक्सेशन करें तो वह बेसिकली तो सुप्रा कॉन्शियस को नहीं कहेंगे कि वह सब कॉन्शियस को एक्टिवेट करने में मदद करता है. सुप्रा कॉन्शियस को एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेशन की आवश्यकता है, और साथ साथ व्यक्ति शांति का अनुभव करता है, एक हल्केपन का, रिलैक्सेशन का अनुभव करता है. और जो तनाव की इंटेंसिटी है वह इंटेंसिटी भी कम होती है. एक जो बहुत बड़ा फायदा है कि कोई भी हम काम करें, जब हम 5-6 घंटे तक कोई कार्य करते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल डाउन होता जाता है, परंतु 5-6 घंटे के बाद अगर हम रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस बल 5 मिनट ही क्यों ना कर ले तो फिर से एनर्जी लेवल इंप्रूव होता है और हम इंथुजियाज्म के साथ और 4-5 घंटे कार्य कर सकते हैं. साथ साथ रिलैक्सेशन, ये जो सभी बातें बताई कि पॉजिटिव थिंकिंग करे, राइट थिंकिंग करे, परंतु जब वो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जब प्रॉब्लम हमारे सामने होते हैं, तो उस विचार को चैनलाइज करना, उसको दिशा देना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में वो हमें खींच रहा है. तो रिलैक्सेशन की स्टेज में विचारों को चैनलाइज करना भी सहज होता है, और साथ साथ हमारे सामने जो प्रॉब्लम है उसे हम सही रूप से देख पाते हैं. जब टेंशन में होते हैं तो ऑलवेज हम प्रॉब्लम को गलत रूप से देखते हैं, और इसके कारण रॉन्ग थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग होता है. तो यह रिलैक्सेशन के कुछ फायदे हैं. अब टेक्निक को क्या अपनाएं? बहुत सारी मेथड्स है, एटलीस्ट हम नाम तो जान ले. आप अपने प्रवचन में भी बता सकते हैं, और कुछ 3-4 टेक्निक कम से कम अगर हम थोड़ी समझ करके, अगर आवश्यकता है तो उसका अभ्यास भी करा सकते हैं. एक तो है कि भी हम नेचर के साथ भी रहे, कहीं प्राकृतिक वातावरण में चले जाए, वहां रिलैक्स होकर के बैठे तो भी व्यक्ति को अच्छा लगता है. कोई ब्यूटीफुल सीन को हम विजुअलाइज करें या देखें वहां, वह भी हेल्पफुल हो सकता है. जिस टेक्निक की हमने प्रैक्टिस भी की थी, जिसकी डिटेल में भी आज हम प्रैक्टिस करेंगे, वह है प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन बाय सेल्फ सजेशन, कि प्रोग्रेसिवली पैरों की उंगलियों से सर तक हम रिलैक्स करें, और उसका बेसिस है सेल्फ सजेशन. और थोड़ी जो डिफिकल्ट टेक्निक्स है, एक टेक्निक जिसको कहा गया है ऑटोजेनिक, ऐसे ही सूचनाओं के द्वारा हम शरीर की एक स्टेज बनाते हैं कि जो स्टेज रिलैक्स्ड है और साथ साथ में उसमें हेल्थ भी इंप्रूव होती है. इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा. एंड देन देयर इज अनदर मेथड नोन एज काउंट डाउन, कि स्पेसिफिक वे में हम 100 से 0 तक या तो 10 to 0 तक काउंट करते हैं तो भी धीरे धीरे व्यक्ति है वह रिलैक्स होता जाता है. और एक पावरफुल मेथड है जिसका नाम है जैकबसन्स मेथड ऑफ रिलैक्सेशन। एडमंड जैकबसन ने 1928 में यह टेक्निक डेवलप की थी, जिसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। और आखिरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह है मेडिटेशन। अब ये जो प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन बाय सेल्फ सजेशन की टेक्निक है, जिसके विषय में हमने तो एक बार अभ्यास भी किया है, अगर आपने उन्हें पहले नहीं समझाया है तो थोड़ा सा बता दो कि इस टेक्निक का आधार क्या है और यह टेक्निक क्यों काम करती है। सिर्फ कल्पना नहीं है, सचमुच ऐसा होता है। हाँ, सभी को याद है कौन सा उदाहरण दिया था कि मन जब नहीं बोलना नहीं, हाथ उठाइए, किसको किसको याद है कि मन जो सूचनाएं देता है वो शरीर तुरंत स्वीकार कर लेता है। हाँ, किसको याद है उदाहरण? नहीं याद है, आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। अच्छा, हाँ सविता बेन सुनाइए, क्या दिया था? हाँ, जो बिजनेसमैन ने कहा था कि ऑफिस में बैठे थे और लगा कि दांत स्वॉलो कर लिया। ऐसे ही आपको दूसरा भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और हमारे पास मटेरियल ज्यादा होना चाहिए। कहीं पर आप ऐसे लेक्चर देने के लिए जाते, दूसरे शहर में गए और आपके 3-4 लेक्चर होने हैं, तो सदैव यह दिक्कत आती है कि कुछ लोग हमेशा आपके साथ आते हैं, कि जो आपको एस्कॉर्ट करने वाले हैं वो हर लेक्चर में आएगा, साथ साथ दूसरे भी ऐसे कुछ लोग होते हैं उनको अच्छा लगता है और हर लेक्चर में वो आ जाते हैं। तो उनके लिए कुछ मटेरियल चेंज होना चाहिए, भले टॉपिक वही हो परंतु कंटेंट थोड़ी सी भी चेंज हो। टोटल चेंज करना जरूरी नहीं, अच्छे पॉइंट तो हम रिपीट भी कर सकते हैं, तो उसमें कुछ परिवर्तन हो तो उनको भी नई इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इसलिए इसी बात को बताने के और भी कुछ तरीके, और एक जो बहुत ही पावरफुल उदाहरण है डॉक्टर दीपक चोपड़ा की, जो बहुत ही फेमस है अपने लेक्चर्स और किताबों से। उनके फादर कर्नल चोपड़ा, जो इंडियन आर्मी में कार्डियोलॉजिस्ट थे, कर्नल के पद पर थे, और एक बार उनकी जम्मू में पोस्टिंग हुई थी। तो जब जम्मू में पोस्टिंग हुई थी तो मिसेस चोपड़ा, कर्नल चोपड़ा की मिसेस, उन्हें जम्मू में जो फ्लावर्स होते थे उसकी स्किन एलर्जी थी, और वो फ्लावर्स के कारण सदैव उनको स्किन में एलर्जी होती रहती थी। तो वैकेशन में कर्नल चोपड़ा ने सोचा कि अगर इसको जम्मू से दूर हम जाए तो ये एलर्जी से फायदा होगा, तो इसलिए वो कश्मीर में गए। और वहां वैकेशन बिताने के बाद जब वापस लौट रहे थे तो जैसे ही प्लेन ने लैंड किया उसे एलर्जी हो गई, परंतु बाद में अनाउंसमेंट हुई कि हमारा प्लेन जम्मू में लैंड नहीं हुआ है, हमारा प्लेन तो उधमपुर में लैंड हुआ है। तो मन की सूचनाओं को शरीर इतना जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है। क्या हुआ, कई लोग आप समझे नहीं कि प्लेन लैंड हुआ मतलब ये जम्मू में लैंड हुआ है, तो यहां पर जरूर फ्लावर्स होंगे, और फ्लावर्स होंगे तो मुझे एलर्जी होनी चाहिए, तो उसे एलर्जी हो गई। हालांकि वह प्लेन तो उधमपुर में उतरा था, जम्मू में उतरा ही नहीं था। तो इतना क्विकली वह इफेक्ट हो सकती है। इस प्रकार के कुछ उदाहरण अगर डिफरेंट हम रखेंगे तो एक्सप्लेन करना सहज हो सकता है। और अब इसके बाद किसके स्टेप्स क्या है, अलग अलग रूप से इसके स्टेप्स बताए जाते हैं, कि जो सहज मैंने बनाया है कि इसको 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। कि एक तो है टोज और फीट, पैर की उंगलियां और पैर का पंजा। दूसरा है लेग्स एंड थाइज, उसके ऊपर का पूरा लोअर एक्सट्रीमिटी का हिस्सा। फिर तीसरा है एब्डोमेन, चेस्ट और गला, बैक भी उसमें आ जाएगी। ये जो सारा हिस्सा है वह थर्ड स्टेज में। फोर्थ स्टेज में है फिंगर्स, पाम, लोअर आर्म और अपर आर्म। और लास्ट है लोअर जॉ, फेस, आईज एंड हेड। तो इस प्रकार से 5 हिस्सों में शरीर को बांट करके सबसे पहले हम एक हिस्से के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अवेयरनेस लाते हैं और फिर उसे रिलैक्स होने के ऑर्डर देते हैं। और इसमें प्रोसेस में क्या किया जाता है कि एक तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, करीब 3 सेकंड के लिए वह जो हिस्सा है जैसे पैर की उंगलियां, तो पैर की उंगलियों में उस क्षण क्या फीलिंग्स हो रही है, जो भी कहीं कुछ वाइब्रेशन हो रहे हैं, कहीं दर्द हो रहा है और कोई भी बात, उसके बारे में हम जागृत हो जाए। आमतौर पर हम जागृत नहीं हो रहे, अभी भी आप देखो तो आप सुन रहे हैं, पैरों की उंगलियों में क्या हो रहा है आपकी जागृति नहीं है, परंतु उस समय 3 सेकंड के लिए उस हिस्से के बारे में हम जो अवेयरनेस है, जो भी फीलिंग्स हो रही है वह जागृत हो, और फिर करीब हम 5 सेकंड उसे 2 बार या 3 बार यह सजेस्ट करें कि वह सचमुच रिलैक्स हो रहा है। जैसे जब मसल्स टेंशन में आते हैं तो क्या होता है कि अगर आप रुई को प्रेस करो और प्रेस करने का उसे फिर से खुला करो तो जो परिवर्तन होता है करीब करीब वैसा ही परिवर्तन है कि जब रिलैक्स होते हैं तो मसल्स भी रुई को खींचने पर कैसे उसमें परिवर्तन आता है वैसे मसल्स भी रिलैक्स होते जाते हैं। तो एक तो हमें यह पहले तो सजेस्ट करना है कि वह रिलैक्स हो रहे हैं, और इसके लिए कोई शब्द का हम उपयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छा शब्द है कि रिलैक्स, या तो दूसरा अच्छा शब्द है लेट गो, कि उसे लेट गो करना है। और जो ज्यादा जानते हैं थोड़े टेक्निकल लोग हैं उनको यह भी शब्द प्रयोग किया जा सकता है कि अनवाइंड, या तो जो इंग्लिश नहीं जानते हैं बिल्कुल उनको भला हम यह भी कहें कि यह शब्द आप लोगों की शांति, वह हिस्सा आपका शांत हो रहा है, हल्का हो रहा है। और अब यह जो बात बतानी है उसका भी तरीका है, यह ना हो कहीं कि हम जो उन्हें रिलैक्स करना चाहते परंतु टेंशन बढ़ जाए। कई बार पहले मैं भी गलती करता था कि भी हम कहते थे रिलैक्स रिलैक्स, तो रिलैक्स होने के बदले लोग उल्टे एंग्शियस हो जाते थे। तो बहुत ही स्लोली एक उसमें रिदम ला करके कि रिलैक्स। और अगर आपके सामने यंग लोग है, यूथ है, तो एक ही शब्द को रिपीट नहीं करो, नहीं तो कोई हंसने लगेगा जोर से। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, एक को रिपीट नहीं करो परंतु यह कहिए कि भी इस पर आप अवेयर हो रहे हैं, वो हिस्सा आपका रिलैक्स हो रहा है, वहां आपको हल्केपन का अनुभव हो रहा है, रिलैक्स, वह हिस्सा बिल्कुल लाइट हो गया है, ऐसे डिफरेंट वे में, तो वह कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और ज्यादा टाइम भी ना दे, जो कॉलेज के या स्कूल के स्टूडेंट है तो वो अधिक समय तक वैसे बैठ नहीं सकते, तो उसको हम क्विकली करें। अगर और नीति से हम 7 मिनट्स देते हैं तो हम 3 मिनट्स में ही वहां पूरा कर ले, तो उनका भी आपको सहयोग मिल सकेगा। तो यह एक वर्ड या तो 2 वर्ड भी, आप एक बार कहो रिलैक्स, दूसरी बार कहो लेट गो, वह हिस्सा आपका बिल्कुल हल्का हो रहा है, लाइट हो रहा है, तो उसकी भी इफेक्ट होगी। फिर 2-3 सेकंड के लिए जिस हिस्से को हमने रिलैक्स किया, यह सोचो कि वहां पर जो एक एनर्जी है, हीलिंग एनर्जी, अच्छे वाइब्रेशन, यह भी सोच सकते हैं कि भाई लाइट येलो रंग के वाइब्रेशंस, हीलिंग वाइब्रेशंस उस पार्ट को मिल रहे हैं, वो पार्ट बिल्कुल स्वस्थ हो गया, बिल्कुल हील हो गया है। और ऐसे एक आध बार सोच करके चित्र निर्माण करके फिर उसकी जो लास्ट स्टेज है कि उस पार्ट से अभी हम विड्रॉ हो जाए कि भी वो अच्छा हो गया, बिल्कुल रिलैक्स हो गया, स्वस्थ हो गया, नाउ आई मैं उससे न्यारा हो जाता हूं, वो वहीं पड़ा है। जैसे जैसे आगे बढ़ो, जैसे घुटनों के नीचे अगर पैर रिलैक्स हो गए तो यह सोचो कि ऊपर के हिस्से के बारे में मैं जागृत हूं, नीचे का हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स और स्वस्थ रूप में डेड बॉडी की तरह पड़ा है, मुझे उसके बारे में कोई भी जागृति नहीं है, कोई भी चेतना नहीं है। और ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते जाए, गले तक आए तो यह सोचे कि भी गले से नीचे का हिस्सा बिल्कुल डेड बॉडी की तरह पड़ा है। जब हम सर तक आते हैं तब जब आमतौर पर रिलैक्सेशन कराते हैं तो बोले इस बात को हम ऐड नहीं करते, परंतु क्योंकि हम मेडिटेशन भी उन्हें सिखाना चाहते हैं तो इसलिए इस बात को भी हम ऐड कर सकते हैं। और कहीं को इवन जो बिगिनर्स भी आपके सेंटर पर आएंगे उनको भी हम कभी 1-2 बार कराए तो उन्हें भी बहुत अच्छा लग सकता है कि यह हम विचार दें कि सारा शरीर रिलैक्स हो गया है। अब सिर्फ आप अपने विचारों और फीलिंग्स के बारे में ही जागृत है, बॉडी के बारे में आपको कोई भान नहीं है। और ये जो विचार है वह पॉइंट ऑफ लाइट में निर्माण होते हैं, पॉइंट ऑफ लाइफ एनर्जी भी कह सकते हैं कि लाइफ एनर्जी में ये विचार निर्माण होते हैं। एंड दैट लाइफ एनर्जी इज अ सेल्फ ल्यूमिनस लाइट। बस आप इस सेल्फ ल्यूमिनस लाइट के बारे में ही जागृत है, सारा शरीर एकदम डेड बॉडी के रूप में पड़ा है। एंड एज यू बिकम मोर एंड मोर अवेयर अबाउट इट, यू आर फीलिंग रिलैक्स, आप एकदम शांत हो रहे हैं, बिल्कुल डिटैच हो रहे हैं, आत्मा के सही गुणों का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे ग्रेजुअली हम स्पिरिचुअलिटी की ओर भी उन्हें ले जा सकते हैं। अब जब ये प्रैक्टिस करते हैं तो उस प्रैक्टिस में आमतौर पर लोगों को क्या अनुभव होते हैं, जिसका वर्णन किया गया है उससे कुछ अलग अनुभव भी हो सकते हैं, परंतु आमतौर पर यह होता है कि हमें यह फीलिंग होती है कि शरीर के जो पार्ट है वो बिल्कुल हल्के हो गए, और जैसे शीतलता का अनुभव हो रहा है, ऐसे सूदिंग इफेक्ट होती है। कुछ लोगों को, सभी को नहीं, पीसफुल वाइब्रेशंस का भी अनुभव हो सकता है, उंगलियों में या तो और हिस्सों में वाइब्रेशन का अनुभव होता है। कभी कभी एक वेव ऑफ रिलैक्सेशन भी, कि जैसे हम सांस लेते हैं तो एक वेव निर्माण हो रहा है और उसकी फीलिंग हो सकती है। कईयों को यह भी फीलिंग होती है कि जैसे कि वो हवा में फ्लोट कर रहे हैं, बिल्कुल हल्के हो रहे गए हैं और फ्लोटिंग सेंसेशन हो रही है। कभी कभी, भले यह रेयर है, परंतु कुछ लोगों को जैसे कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी हुए हैं। एक और भी अनुभव है, ऐसा लगता है कि जैसे हमारे शरीर की साइज है वो बढ़ती जा रही है, परंतु वो भी अच्छा है, डरने की बात नहीं। जो भी अनुभव हो, कभी कभी ये भी होता है कि जैसे मेरा शरीर हैवी हो गया, टेंस नहीं हुआ, तनाव नहीं आया, परंतु जो इसका वेट है, वो बॉडी पार्ट्स का वेट है, वो जैसे कि मेरा थोड़ा बढ़ गया, तो दैट इज ऑल्सो गुड। जो भी होता है रिलैक्सेशन में वह फायदेमंद ही है। रिलैक्सेशन से कभी किसी को कोई हानि नहीं हुई। सिर्फ यह हो सकता है कि भी आप रिलैक्स न हो, परंतु एक सावधानी हमें यह रखनी है कि जब हम रिलैक्स करते हैं तो कोई फोर्स नहीं देना है, यह कहने में भी दबाव नहीं डालना है। आप फोर्सिबली अपने शरीर को रिलैक्स नहीं करना चाहते कि रिलैक्स रिलैक्स, प्रेशर दे नहीं रहे। अगर आप प्रेशर देंगे तो हो सकता है कि आपको लगे कि जैसे सर मेरा भारी होने लगा। बस इतना एक प्रिकॉशन लेंगे कि बिल्कुल हल्के से करना है, आराम से करना है, बल रिलैक्स न भी हो, मन अगर और कहीं चला गया कोई बात नहीं, जितना जल्दी हो सके आप जागृति से वापस उसे इसी पे ले आइए कि भाई मैं रिलैक्स कर रहा हूं, मुझे इन अंगों को कहना है कि वह रिलैक्स हो जाए। तो इतनी पूर्व तैयारी से अगर हम रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि भी हम तो बहुत बिजी है, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम कैसे रिलैक्स करें। मेडिटेशन के लिए भी लोग यही बात बताते हैं। तो उनके लिए जो एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है कि आप जो रोज जिस टाइम पर उठते हैं उससे 15 मिनट जल्दी उठ जाएं। भले आपको लगे कि मुझे थकावट है, कोई बात नहीं, आप 15 मिनट पहले उठ जाओ और फिर तैयार होने लगो। तो जब हम तैयार भी होते हैं, क्योंकि नींद में हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम होता है, इसके कारण जब उठते हैं उस समय हमें नींद का अनुभव होता है या तो थकावट का अनुभव होता है। जब एक बार हम उठ जाते हैं 5-6 घंटा नींद करके, और फिर जब आप तैयार होंगे तो ब्लड प्रेशर फिर से नॉर्मल हो जाएगा और आपको फ्रेशनेस का अनुभव होगा, और फिर तैयार हो जाइए। और ब्रेकफास्ट करने से पहले, क्योंकि अब आपके पास एक्स्ट्रा 15 मिनट मिलेगी ऑफिस में जाने से पहले, तो उस 15 मिनट आप रिलैक्सेशन का अभ्यास करिए। तो ये 15 मिनट रिलैक्सेशन में जो आपको फायदा होगा वो 15 मिनट नींद से भी अनेक गुना ज्यादा है। फिजियोलॉजिकल जो बेनिफिट्स होते हैं वह भी नींद से ज्यादा है, और आपका एनर्जी लेवल भी बहुत ही अच्छा बढ़ जाएगा। इसलिए कोई आपको विशेष समय देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बस नींद का 15 मिनट कम कर दीजिए तो भी रिलैक्सेशन के लिए समय निकल पाएगा। साथ साथ यही जो बात मैंने आपको बताई कि 15 मिनट स्लीप नींद में जो फायदे होते हैं उससे अधिक फायदे रिलैक्सेशन में होते हैं, इसलिए हम रिलैक्सेशन का अभ्यास करें, बल सोए कम। अच्छा हाँ अभी हाँ, ये बहुत अच्छी बात, मैंने आपको ऑलरेडी ऐसे तो बता दिया है कि भी माइंड और बॉडी दोनों का कनेक्शन है। जैसे कहा कि भी आप हंसेंगे, कॉन्फिडेंट बॉडीली फील करेंगे तो माइंड को भी कॉन्फिडेंस का अनुभव होगा। ऐसे ही जब बॉडी में रिलैक्सेशन होता है तो एवरी सेकेंड कम होते तो ऑटोमेटिक आत्मा को जो मैसेज मिलता है वह भी कम होता है, और उसके कारण हम एक्चुअली मेंटली भी रिलैक्सेशन का अनुभव करते हैं। और अब इसी में, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि मेडिटेशन इज मोर पावरफुल देन रिलैक्सेशन, तो भले इस लेवल पर ना भी बताओ ना, तो लोग थोड़े कंफ्यूज भी होंगे, आगे चल के जब क्वेश्चन आंसर हो या तो नेक्स्ट डे आगे जैसे स्टेप्स आगे बढ़े तब यह बात बताने अच्छा है। और इस वास्तविक अनुभव है, मैंने भी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि जब हम रिलैक्सेशन कराते हैं तब कुछ पेशेंट, कईयों को तो बहुत अच्छा लगता है, सचमुच रिलैक्स हो जाते, लेकिन कुछ पेशेंट ये कहते हैं कि डॉक्टर मेरा सारा शरीर रिलैक्स हो गया लेकिन माइंड अभी भी रिलैक्स नहीं हो रहा है, माइंड में वो टेंशन, डर या डिप्रेशन अभी भी है। तो ये पॉसिबल है कुछ किस्सों में कि भल बॉडी अच्छी रिलैक्स हो जाए फिर भी माइंड इतना रिलैक्स नहीं हो रहा है। और मेडिटेशन में हम क्या करते हैं कि पहले ही माइंड को रिलैक्स करते हैं, और जब माइंड को रिलैक्स करते भले वो थोड़ा मुश्किल है, अभी दोनों बातों में एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। रिलैक्सेशन का एडवांटेज ये कि ये इजी है, पहली भी बार अगर आप 10 लोगों को प्रैक्टिस कराओ तो 5-6 तो जरूर रिलैक्स होंगे, तो वो एक इजी टेक्निक है। भल मेडिटेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, उसके लिए एक दिन में शायद आप कंसंट्रेशन अचीव नहीं कर पाएंगे, रिलैक्सेशन नहीं होगा, आपको 15 दिन या एक मास का समय लगेगा तब आप वह सचमुच मेडिटेशन की स्टेज में जा पाएंगे। परंतु एक बार आप मेडिटेशन की स्टेज में जाएंगे तो बॉडी डेफिनेटली रिलैक्स होगी, तो इस बात को हम उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा ये तो डिफरेंट पार्टी है टोटली, ये भी कभी आपको इंटरेस्ट हो तो हम पार्ट की, जैसे ये स्मार्ट की ट्रेनिंग है तो पॉजिटिव अप्रोच टू टोटल हेल्थ का जो प्रोग्राम है उसको भी अच्छा स्टैंडर्डाइज करेंगे, ताकि उसमें ये सभी बातें, हेल्थ की बातें जो है वह हेल्थ की सभी बातें भी आपको बता सकते हैं। तो आइए, ठीक है, और भी ये भी देखा गया जो बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी कि जो लोग कहते हैं कि हम बहुत बिजी है, हमारे पास रिलैक्सेशन के लिए टाइम नहीं है, उनको यह सजेस्ट करेंगे कि आप टी और कॉफी ब्रेक जो लेते हैं जिसमें कम से कम 5 मिनट तो लगती है, उतना समय आप रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस करिए। तो टी कॉफी में क्या होता है कि चलो एक दो कप चाय तो ठीक है, परंतु आजकल हमें ऐसी आदत हो गई है कि आम व्यक्ति दिन में 5-6 कप चाय पीता है, और उससे क्या होता है कि एक बार जब आप चाय पीते हैं तो आपका अभी अगर आपका एनर्जी लेवल यहां पर है तो एक कप आपने चाय पी तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया तो आपको थोड़ा समय अच्छा लगता है, लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद वो एनर्जी लेवल और भी नीचे आ जाता है जो आपका ओरिजिनल था उससे, तभी आप क्या करेंगे और एक कप चाय पियेंगे तो फिर से आपका एनर्जी लेवल थोड़ा बढ़ता है, 1-2 घंटे के बाद और वो नीचे आ जाता है। ऐसे करते करते सारे दिन के बाद हमें ऐसा लगता है कि एज इफ वी आर ड्रेन्ड आउट। तो टी कॉफी ब्रेक से तो अच्छा है कि हम रिलैक्सेशन का ब्रेक ले। तो चलिए हम रिलैक्सेशन का ब्रेक लेते हैं, और अब इसमें पोजीशन भी उनको बतानी है। कल तभी कह दो कि मैं आपको पोजीशन बताऊंगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब, जैसे अभी हम चेयर में बैठे हैं ऐसी चेयर में भी हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, परंतु अगर आप घर में अभ्यास करते हैं तो प्रिफरेबली एक रिलैक्सिंग चेयर लीजिए कि जिसमें आप सर को भी रेस्ट दे सको, तो सर को रिलैक्स करना भी, नेक के मसल्स को रिलैक्स करना भी, तो ये भी सजेशन दीजिए कि भी उस अनुसार करना, और भी अच्छा है। और पोजीशन क्या होनी चाहिए कि कमर को सीधी रखे, आप अपनी पैरों की जो लेंथ है उसके अनुसार पोजीशन को भी देखिए कि आपकी पोजीशन क्या है। बहुत नजदीक भी नहीं होनी चाहिए, बहुत दूर भी ना हो, प्रेशर नहीं आना चाहिए थाइज में नीचे, हो और उसके बीच में थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर के ऐसे अंतर रहे। और जब आप आराम से ऐसे हल्के से अंतर रखते हैं तो जो प्रैक्टिस हमने पहले भी की वैसे आपको वहां ऑटोमेटिक वाइब्रेशंस फील होने लगते, ना हो तो भी कोई बात नहीं है, परंतु अधिकांश लोगों को वो वाइब्रेशन फील हो सकते हैं। और यह सर्किट कंप्लीट होता है कि जब भी हमें टेंशन है जीवन में तो वह टेंशन के कारण एनर्जी जो शरीर में फ्लो हो रही है वो अलग अलग स्थानों पर रुक गई है, और ये जो एनर्जी रुक गई है वो फ्लो होना शुरू हो जाती जब हम रिलैक्स होते हैं तो। और इसके कारण ये सर्किट कंप्लीट होने से आपको वाइब्रेशंस भी फील होंगे और साथ साथ उस एनर्जी को आप जमा करके रखेंगे। विशेष ध्यान दे कि शोल्डर्स को हल्का छोड़ देना है, शोल्डर्स को उठाकर कहीं अनजाने में ही हम टेंशन में होते हैं तो शोल्डर्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं, तो उसे भी बिल्कुल हल्का और ढीला छोड़ दे। और दांतों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखे, कई लोग गुस्से के कारण दांतों को पीसते हैं, परंतु जब दांतों को हम बीच में डिस्टेंस रखते हैं तो ऑटोमेटिक लोअर जॉ रिलैक्स होने लगता है, वह एक नेचुरल स्टेज है। भल होठों को टच किया हो या तो थोड़ा सा लाइटली मुंह खुला हो तो भी कोई बात नहीं है, ऑटोमेटिक लोअर जो है वह रिलैक्स होने लगेगा। और मैंने आपको आगे भी कहा था कि जो बिगिनर्स है उनको यही कहो कि आप भल आंखें बंद करिए, जब आप थोड़े हायर लेवल पर जाएंगे उनको मेडिटेशन सिखाएंगे 5-7 बार मेडिटेशन हो जाए फिर ये बताओ कि ओपन आई मेडिटेशन कैसे इंपॉर्टेंट है, और वो ओपन आई मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो उन्हें बहुत सारे फायदे होंगे। तो इस अनुसार चलिए हम भी थोड़ा सा ये जो ऑटो रिलैक्सेशन बाय सेल्फ सजेशन की प्रैक्टिस करें, सारे शरीर को एकदम हल्का छोड़ दीजिए, 3-4 गहरे सांस लेते हैं, पैरों की उंगलियों में होने वाली फीलिंग्स पर ध्यान दे। इस क्षण जो भी अनुभूति पैरों की उंगलियों में हो रही है उस पर ध्यान दे। पैर की उंगलियां शांत हो रही है, रिलैक्स, एकदम हल्की हो रही है, रिलैक्स। लेट गो, धीरे धीरे पैर का पंजा भी रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स, बिल्कुल शांत और रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स, एकदम हल्का हो जाता है, शांत हो रहा है। अभी घुटनों से नीचे पैरों में होने वाली फीलिंग्स को देखते हैं। वह मांसपेशियां भी रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स, रिलैक्स, एकदम हल्की हो रही है, शांत। दोनों पैरों में हल्के पीले रंग के वाइब्रेशंस की जो स्वास्थ्य में वृद्धि करने वाले हैं वह फैल रहे। और मैं अपनी चेतना को विड्रॉ कर देता हूं, बस वही पूर्ण रूप से शांत और स्वस्थ रूप में पड़े हैं, संपूर्ण पैर भी रिलैक्स होने लगा है, कमर से नीचे दोनों पैर एकदम हल्के हो रहे, रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स। बिल्कुल शांत और रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स। मैं कमर के ऊपर के हिस्से के विषय में जागृत हूं, दोनों पैर डेड बॉडी की तरह पड़े हैं। सांस की गति पर ध्यान दें, सांस के साथ साथ पेट और चेस्ट की जो मूवमेंट हो रही है उस पर भी हल्के से ध्यान देते हैं। पेट की मांसपेशियां रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स। रिलैक्स। एकदम हल्की हो रही है। आंतरिक अवयव भी शांत और स्वस्थ हो रहे हैं, रिलैक्स। लेट गो। धीरे धीरे चेस्ट के मसल्स भी रिलैक्स होने लगे हैं, रिलैक्स, रिलैक्स। लेट गो। हृदय भी शांत और नियमित हो रहा है, शांत। पीठ और कमर की मांसपेशियां एकदम हल्की और रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स, मिला है, उस उसी पर ध्यान दे। अगर मन में और विचार भी आते हैं तो तुरंत इसी बात पर ले आए कि कमर के मसल्स, पीठ के मसल्स सचमुच रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, शोल्डर्स पर ध्यान दे, शोल्डर्स भी एकदम हल्के हो जाते हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, पैरों की उंगलियों में जो भी फीलिंग्स हो रही है उस पर ध्यान देते हैं। हाथों की उंगलियों पर ध्यान दे रहे हैं, हाथों की उंगलियां रिलैक्स हो रही है, बिल्कुल हल्की हो जाती है। हाथों की उंगलियां एकदम हल्की हो रही है। हाथ का पंजा और बाहें भी रिलैक्स होने लगी है। रिलैक्स, शांति का अनुभव हो रहा है। रिलैक्स, गले से नीचे सारा शरीर एकदम हल्का और रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स। आप सिर्फ गले के ऊपर के हिस्से के बारे में ही जागृत है, लोअर जॉ में होने वाली फीलिंग्स पर ध्यान देते हैं। लोअर जॉ रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स, एकदम हल्का हो रहा है। रिलैक्स, चेहरे की मांसपेशियां भी हल्की और रिलैक्स हो रही है। रिलैक्स, रिलैक्स। आंखें शांत और शीतल हो रही है। रिलैक्स, धीरे धीरे दिमाग भी शांत हो रहा है, बिल्कुल हल्केपन का अनुभव हो रहा है, पूर्णतः शांति का अनुभव हो रहा है। रिलैक्स, पैरों की उंगलियों से सर तक पूरा शरीर शांत हो गया है। हम सिर्फ अपने विचारों के विषय में ही जागृत है, जो फीलिंग्स हो रही है उसके विषय में जागृत है। ये विचार और फीलिंग्स पॉइंट ऑफ लाइट, स्वयं प्रकाशित ज्योति में निर्माण होते हैं। मस्तिष्क के मध्य में स्थित ये पॉइंट ऑफ लाइट ही थॉट्स और फीलिंग्स को निर्माण करती है। जैसे जैसे ये भाव पक्का होता जाता है, न्यारेपन का अनुभव हो रहा है, बिल्कुल हल्केपन का अनुभव हो रहा है। आत्मा ही शांति से भरपूर है। जैसे जैसे स्मृति पक्की होती जाती है, बिल्कुल न्यारापन, गहरी शांति का अनुभव हो रहा है। यही आत्मा की मूल अवस्था है। आत्मा प्रेम स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप है। पूर्णतः पवित्र है। अपने सामने और एक पॉइंट ऑफ लाइट का चित्र निर्माण करें। ये बहुत ही प्रकाशित जगमगाती लाइट है। लाइक अ सोर्स ऑफ लेजर, इससे शांति की किरणें, शांति के वाइब्रेशंस प्राप्त हो रहे हैं कंटिन्यूअसली। पावरफुल रेस के रूप में ये वाइब्रेशंस प्राप्त हो रहे हैं और आत्मा भरपूर होती जाती है। मैं बिल्कुल हल्का, गहरी शांति का अनुभव कर रहा हूं। इस पॉइंट ऑफ लाइट से शक्ति का भी अनुभव हो रहा है। मेरे विचार इतने शक्तिशाली बन रहे हैं कि जिन्हें जो भी दिशा देना चाहूं मैं दे सकता हूं। मुझे यह फील हो रहा है कि मेरे विचार पूरी तरह मेरे कंट्रोल में आ गए। अब राइट थिंकिंग करना, पॉजिटिव विचार करना मेरे लिए बिल्कुल सहज है। तनावपूर्ण परिस्थितियों में मैं सही दृष्टिकोण से ही व्यवहार करूंगा ताकि जीवन बिल्कुल तनाव मुक्त बन जाए। अब मुझे एहसास हो रहा है कि इन बातों को जीवन में अपनाने से, इसका नियमित अभ्यास करने से सचमुच जीवन तनाव से मुक्त हो सकता है, गहरी शांति का अनुभव हो सकता है। धीरे धीरे वापस जागृत स्थिति में आते जाते हैं। आंखें खोलते हैं, एकदम जागृत हो जाते हैं। कल आसपास देखे परंतु वह रिलैक्सेशन की स्थिति, शांत स्वरूप की स्थिति को कायम रखे। उससे थोड़ा भी, 2% 5% भी आपको रिलैक्स लगा हो, आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हाथ उठाइए। तो आप देखेंगे कई लोग हाथ उठाएंगे, फिर भले पूछ भी लो कि भी अगर किसी को कोई, पहले से हमने क्लेरिफाई किया तो ऐसा नहीं होता है, तो वह बात पूछना भी अच्छा है। और अब थोड़ा सा जो मेरे पास और 10 मिनट का टाइम है कि जो दूसरी रिलैक्सेशन के मैंने आपको टेक्निक्स बताई, भले उसे तो डिटेल में बताना चाहिए, जैकबसन्स मेथड काफी समय लेती है, सिर्फ उसका एसेंस बता देता हूं ताकि आपको अगर कोई पूछे या तो बताना हो तो आप बता सकेंगे। जो दूसरी एक टेक्निक इसमें हमने देखी थी जिसका नाम था ऑटोजेनिक, तो ये याद रखिए, अगर किसी को आप कहेंगे तो साइकेट्रिस्ट को भी लगेगा कि बहनों को सचमुच अच्छा सा नॉलेज है। ऑटोजेनिक क्या है कि साइंटिस्टों ने यह देखा कि आप सभी ने अनुभव किया होगा कि जब आप नर्वस हो जाते हैं तो हाथ में क्या होता है, हाथ के पंजे में नर्वस हो जाते हैं तो पसीना आता है, हाथ ठंडे हो जाते हैं, तो वो टेंशन की इफेक्ट है। और जब हम रिलैक्स होते हैं तब क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा बढ़ता है तो इसके लिए पैर और हाथ वो वार्मनेस, गर्म नहीं परंतु एक वार्मनेस का जो अनुभव है वह हाथों में और पैरों में होता है। और दिमाग ठंडा होता है, आंखें और दिमाग वह ठंडे होते हैं। तो उन्होंने यह सोचा कि जैसे हमने यह ऑटो सजेशन किया कि भी पैरों को रिलैक्स होने की सूचना दी, ऐसे उन्होंने यह चिंतन किया कि अगर हाथ और पैरों को हम थोड़े गर्म होने की सूचना दें कि वो वार्म हो रहे हैं। गर्म पानी में हाथ डुबोने से कैसे फीलिंग होती है, ऐसी वार्मनेस की फीलिंग अगर हम सजेशंस के द्वारा लाए और आंखों को और सर को यह सूचना दे कि वह ठंडे हो रहे हैं। अगर आप ठंडा पानी लगाते हैं या तो बर्फ लगाते हैं तो कैसे ठंडी का अनुभव होता है, ऐसे ही वह शीतलता का वहां अनुभव हो रहा है। और अगर सजेशंस के द्वारा यह स्टेज हम बना पाए शरीर की तो वह स्वास्थ्य में बहुत वृद्धि करती है और रिलैक्स भी करती है। तो कई मरीजों को यह प्रैक्टिस भी कराई जाती है जिसका नाम है ऑटोजेनिक। और एक जो मैंने आपको टेक्निक बताई जिसका नाम था काउंट डाउन, तो काउंट डाउन का यह एसेंस है कि हम इस प्रकार का अभ्यास करें, जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे और एक चित्र निर्माण करें कि हम 50 मंजिल इमारत है उसमें वहां पर लिफ्ट में 50th फ्लोर पर है और वहां से धीरे धीरे नीचे आते जाते हैं। ये भी सोच सकते हैं कि लिफ्ट में ये रिलैक्सिंग चेयर है और मैं लिफ्ट में आराम से इस रिलैक्सिंग चेयर में बैठा हूं और जैसे जैसे लिफ्ट नीचे आती जाती जो भी फीलिंग हो रही है आप काउंट भी करो 50, 49, तो सचमुच सोचो कि लिफ्ट नीचे आ गई है, 49th फ्लोर पर आई है और आप बाहर वो देख सकते लिखा हुआ 49 और वह नीचे आती जाती है, आप पढ़ रहे 48, 47, 46, ऐसे सचमुच चित्र भी निर्माण करे और फीलिंग भी करते जाए। और यह शुरुआत में ही अपने आप को कहे कि मैं 50 से 0 तक काउंट करूंगा, जब मैं 0 तक पहुंचूंगा तो एकदम रिलैक्सेशन का मुझे अनुभव होगा, मैं बिल्कुल हल्का हो जाऊंगा। और धीरे धीरे यह काउंट करते जाए और 0 तक पहुंचने पर सचमुच व्यक्ति को थोड़ा रिलैक्स या तो हल्का लगता है। ऐसा 3-4 दिन करे और फिर अपने आप को ये हम कहे कि अभी मैं 40 से 0 तक गिनती करूंगा, 40th फ्लोर से 0 तक आऊंगा तो भी मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। और फिर 3 दिन ये प्रैक्टिस करे, 40 to 0 तक काउंट करना है और मैं रिलैक्स हो रहा हूं, फिर 30 to 0, 20 to 0, ऐसे कहते कि 10 to 0 भी आप काउंट करेंगे तो भी वो अल्फा स्टेट में आ जाएंगे। एक ट्रेनिंग है जिसको कहते हैं सिल्वा माइंड कंट्रोल, जिसके लिए काफी पैसे लिए जाते हैं और उसमें यह इसकी बेसिस है एक कि कैसे 10 to 0 करने से भी आप वो अल्फा स्टेट में जा सकते हैं कि जो एक रिलैक्सेशन की स्थिति है। और जैकबसन पहले डिटेल नहीं बता, सिर्फ उसका सार अगर समझना हो, जैकबसन ने यह कहा कि भी सिर्फ क्या सजेशन देने से रिलैक्स होंगे, यह तो हम कल्पना कर रहे हैं। उन्होंने यह विचार किया कि फिजियोलॉजिकली भी रिलैक्स होना चाहिए, जैसे एक स्प्रिंग को आप ऐसे खींचो और तो टेंशन आएगा फिर छोड़ दो तो फिर से वो अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाएगी, और ऐसा आप करेंगे तो एक जो उसकी नॉर्मल स्ट्रेस थी उससे शायद थोड़ी ज्यादा भी रहे। तो यही बात मसल्स में भी होती है कि भी हमारे मसल्स में भी टेंशन है परंतु मैं इसे कॉन्ट्रैक्ट करूं, 2-4 सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट करके रखूं और फिर जब एकदम लूज छोड़ दूं तो एक तो रिलैक्सेशन की फीलिंग भी होती है कि रिलैक्स होने पर क्या हो रहा है और सचमुच भी मसल्स रिलैक्स होते हैं। तो उन्होंने ऐसे पैरों की उंगलियों से सर तक सभी स्टेप्स बताए, आवश्यकता नहीं है आपको समझने की, सिर्फ जानकारी के लिए वह हम ध्यान रखें कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप सभी मसल्स को उन्होंने रिलैक्स करना सिखाया। और यह है जैकबसन मेथड ऑफ रिलैक्सेशन। और अब अंत में कुछ कविता की पंक्तियां हैं, उसके द्वारा हम कैसे रिलैक्सेशन या तो शांति का क्या हमें जीवन में फायदा है, इस पर इस कविता की पंक्तियों के द्वारा हम कंक्लूड करेंगे। और हम आशा रखते हैं कि आप सभी जरूर नियमित दिन में कम से कम एक बार तो रिलैक्सेशन का जरूर अभ्यास करें।